कुर जनना भो बीजांकुर जनना रागात्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो दिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुदी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पादु ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज
की।
हमेशा की तरह हमारे पास अपने बाबत कुछ विचार करने का थोड़ा सा समय है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसका एक ही बेटा था। एक दिन वो बीमार पड़ गया। बहुत कोशिश की लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। अब ऐसा लगता था कि शायद वो बेटा नहीं रहेगा। राजा उसके सिरहाने बैठा था। जब कोई ये तय हो जाता है कि अब नहीं रहेगा, तब मन करता है उसके सिरहाने बैठे। जब तक वो जिंदा रहता है तब तक कभी नहीं लगता कि उसके सिरहाने बैठे। और बैठे बैठे बहुत थकान हो जाने से राजा सो गया था। स्वप्न देखा उसने, स्वप्न में उसके बहुत बड़ा राजमहल उसने देखा। एक जैसे अच्छे अच्छे उसने 12 बेटे देखे। इतने में यहाँ जो एक बेटा जीवन की आखिरी सांस लेता था वो मर गया। रानी ने जगाया। कितना मुश्किल होता है किसी को जगा पाना। और सचमुच अगर कोई एक बार जाग जाता है तो फिर नहीं सोता। हम सब ये भी तो नहीं कह सकता कि सोए हुए लोग हैं, पर ये भी तो नहीं सोच पाता हूं कि क्या सचमुच हम जाग गए हैं। जागने वाले को फिर सुनने की जरूरत नहीं होती और शायद किसी को उसे सुनाने की जरूरत भी नहीं होती। राजा जागा और शायद पहली बार जागा और जैसे ही उसे यह मालूम पड़ा कि उसका बेटा मर गया है वह बहुत जोर से हंसा। उसे रोना चाहिए था, किसी के मरने पर तो रोया ही जाता है, पर वो नहीं रोया, वो हंसा। रानी ने कहा कि हुआ क्या आपको? उसने कहा कुछ नहीं, मैं जाग गया हूं सिर्फ और देख रहा हूं कि एक ये जो मेरी खुली आंख से मरा हुआ पड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक जो मैं अपनी बंद आंख से अभी 12 को देख रहा था और आंख खुलते ही वे मर गए, सब लुप्त हो गए, इन दोनों के बीच में विचार कर रहा हूं कि अगर उसको सच मानता हूं तब भी बहुत मुश्किल है, वे मेरे हाथ में नहीं है, अगर इसको सच मानता हूं तो ये भी मेरे हाथ से जा चुका है। आखिर कुछ ऐसा है जो कि हाथ आ सके, और उसके हाथ तो आ ही गया। सच्चाई तब आती है भैया जब सपना टूट जाता है। डे ड्रीम भी होती है, दिन के सपने भी होते हैं, रोज देखते हैं। जब थोड़ा धक्का लगता है, जब कोई पीड़ा होती है, सपना टूटता है, थोड़ी सी आंख खुलती है, फिर सोने का मन करता है, फिर सो जाते हैं। भगवान का केवल ज्ञान हमें हमेशा के लिए सपने तोड़कर जागने का संदेश दे रहा है। एक ऐसी रोशनी हमारे भीतर हम पैदा कर लें जिसमें कि फिर अंधेरा ना हो, इस तरह जाग जाएं जिससे कि फिर हम सो ना पाए। सच्चाई को पाने के लिए स्वप्न से हटना पड़ेगा। स्वप्न दो काम करता है, एक हमें हमसे दूर ले जाता है, और एक जो हमारा नहीं है उसके हमारे होने का भ्रम खड़ा करता है। रात अपनी टूटी फूटी खाट पर बाहर सो तो सपने में पता नहीं किस बंबई के फ्लैट में सोते मालूम पड़ते। ऐसा अपने से घर से दूर ले जाने वाला सपना है। यहां टूटी खाट थी, सपने में बहुत आलीशान महल के होने का भ्रम होता है। अगर ये चीज समझ में आ जाए कि जो जो हमें अपने से दूर ले जाता है वो सपना है, और जो जो हमारा नहीं है उसके अपने होने का जो भ्रम पैदा करवाता है वो सपना है, तो मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा सच्चाई और कोई नहीं होती। बड़ी से बड़ी सच्चाई ये है कि जितना जितना हम अपने निकट आते हैं, जितना जितना हम अपने से जो पृथक है उसे पृथक मानते चले जाते हैं, उतने उतने हम सच्चाई को पाते चले जाते हैं। प्यास होनी चाहिए सच्चाई को पाने के लिए, पूरा जीवन दांव पे लगाने की ताकत होनी चाहिए। कभी किसी चीज को जब हम पाते हैं तो वो अनायास तो मिल जाती है, पर उस अनायास मिलने में भी कितना प्रयास करना पड़ता है ये हमें सोचना चाहिए। प्यास बहुत आवश्यक है। पूरा जीवन दांव पे जो लगाने को तैयार है वो सच को पा सकता है, जो निष्पक्ष है वो सच को पा सकता है। निराग्रह दृष्टि होनी चाहिए सच को पाने के लिए, और कम से कम सच की तरफ मुक्त होना चाहिए। सूरजमुखी को देखा आपने, सूरज उगता है वो उसकी तरफ मुख किए रहता है, सूरज घूमता है वो भी घूमता चला जाता है, कभी पीठ नहीं देता। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? सच की तरफ पीठ तो मत दो। अगर सूरज की तरफ पीठ दो तो अपनी ही छाया रास्ते को अंधेरा में डाल देती है, अपनी ही छाया रास्ते को ढक लेती है, और सच की तरफ मुंह हो तो शायद पीछे पड़ती है, असत्य की तरफ पड़ती है, वरना असत्य सामने आ जाता है अगर सत्य की तरफ हमारा मुख नहीं होता है। तो तीन कोशिशें आवश्यक हैं। प्यास होना चाहिए, और ऐसी छोटी सी प्यास नहीं, पूरे जीवन को दांव पे लगाने के लिए तैयारी हो तब सच आता है। जैसे कि 12 बरस के लिए महावीर स्वामी ने अपने जीवन को दांव पे लगाया, और 1000 बरस के लिए भगवान ऋषभ देव ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, और निष्पक्ष होकर के जो वास्तविकता थी उसे देखने की कोशिश की, और इतना ही नहीं वे निरंतर सच को देखने के लिए अपना मुख सच की तरफ किए रहे, और आखिरी बात वे अपने में इतने चुप होते गए। मैं तो कई बार सोचता हूं, उपनिषदों की कहानियां पढ़ी हैं मैंने, कई बार उसमें एक कहानी मुझे बहुत अपील करती है। वो कहानी मुझे मत के डाल देती है कि मैं अभी तक चुप क्यों नहीं हो पाया। वास्तव में जिसे सच को पाना है उसे चुप हो जाना पड़ेगा। मैं सच को कहता रहा, कह कहकर सब झूठ करता रहा। जिस सच को कहा नहीं जा सकता उस सच को कह कहकर उसे हम झूठा करते चले जाते हैं। एक बहुत छोटी सी घटना और बस फिर अपन सच की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। मैं तो यही मान रहा हूं, पता नहीं कौन कब निकलेगा। कोई आज ऐसा भी तो नहीं है जो ये कहे कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं वो सच जो कि तीर्थंकर भगवंतों ने पाया होगा। हम तो सिर्फ इस ऐसे समय में यहां पर आए हैं जहां किसी तीर्थंकर का साक्षात, उस सच का साक्षात दर्शन भी अपनी आंखों से नहीं कर सकते। फिर भी छिप गए जो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। वे तो कोई साथ छेड़ करके अपनी जिंदगी का छिप गए हैं, पर उनकी आवाज भी हमारे पास है, उतना भी पर्याप्त है। हम पालेंगे उनको उनकी आवाज सुन सुन करके। आप भी कोशिश करिए कि कभी कहीं कोई आवाज सच को पाने की लगाए तो उसके पीछे चलना शुरू करिए, चुपचाप चलना शुरू कर दीजिए। एक पिता के चार बेटे थे। पिता का मन था कि जीते जी ये चारों सच को पाले। पता नहीं आज किस पिता का मन ऐसा होता है कि मेरा बेटा सच को पाले। और एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि जाओ तुम चारों जाओ, मेरा आशीर्वाद ले जाओ, सच को पा लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चारों गए, वर्षों बीत गए, पिता इंतजार में है कि वो सच को पाकर के लौटेंगे। सचमुच कोई अगर इतने पूरे मन से सच के लौट के आने का इंतजार करे तो जरूर से सच निकट आ जाता है, पर बहुत प्यास होनी चाहिए। पिता 12 बरस तक इंतजार करता रहा, सांसें रुकी रही। शायद सच को पाने के लिए सांसें रुकी नहीं। हमारी सांसें सच को पाने कहां रुकी हैं? कभी देखिए हमारी सांसें तो चीजें जिसको कि हम कल तक असत्य कहते आए हैं उन सब को पाने के लिए तड़पती हमारी आंखें। हमारी सांसें उन सब को पाने के लिए रुकी हुई हैं जो हमारा नहीं है। कभी सोचना एक एक सांस उस सब को पाने में व्यतीत हुई जो अपना नहीं था, और एक एक सांस रोक के हमने रखी जो हमारा नहीं था। एक भ्रम जो हमने अपने चारों तरफ बना के रखा है वो हमारी अपनी कमजोरी है। खैर हमारा भी दिन आएगा, हम उस भ्रम को तोड़ेंगे, सब मिलकर के तोड़ेंगे। मैं तो यही भावना भा रहा हूं। अगर ऐसा हो सकता कि किसी को सच प्राप्त हो जाता और वो दूसरे को ट्रांसफर कर देता तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता। पार्टिसिपेट भी तो नहीं कर सकते, पार्टनरशिप भी तो नहीं चल सकती कि थोड़ा थोड़ा हम आपके साथ भी सच को पा लें। सबको अकेले अकेले ही पाना पड़ता है और चुप होने पर मिलता है। वो चारों निकल गए, अकेले अकेले निकल गए थे चार दिशाओं में। और 12 बरस के बाद जब पहला बेटा लौट करके आया, पिता ने पूछा कि सच मिला? उसने वेद की ऋचाएं दोहराना शुरू कर दी। दूसरा लौटा, पिता ने कहा सच मिला? उसने उपनिषद के श्लोक दोहराना शुरू कर दिए। पिता चुप है, कुछ नहीं कहता, उदास हो गया। तीसरा लौटा, उसने जितने भी धर्म थे उन सब धर्मों की सारभूत वस्तु कहना शुरू कर दी। पिता और उदास हो गया, निडाल हो गया और अपने बिस्तर पर जिस पर आखिरी सांस लेता था लगभग लेट गया। तीनों खाली हाथ लौट आए, तीनों खाली हाथ लौट के आ गए। 12 बरस सच की खोज में गए, कुछ थोड़ी सी ऋचाएं, कुछ थोड़े से श्लोक, कुछ थोड़ी सी चार बातें लेकर के वापस लौट आए। कह रहा है वो कि खाली हाथ लौट आए। 4थे बेटे का इंतजार था, 4था भी आया पर वो चुपचाप खड़ा था। पिता ने जैसे ही उसे देखा तो उठने की कोशिश की, सोचा कि शायद ये लेके आया होगा और ये सोच रहा होगा कि मैं कैसे बोलूं, पिता तो श्लथ हो गए हैं, पड़े हुए हैं, इसलिए शायद नहीं बोल रहा होगा। बहुत हिम्मत करके पिता खड़ा हुआ और उसने कहा, कहो। सच पाया, वो बेटा कुछ भी नहीं बोला। पिता ने और निकट आकर के उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सच को पाया। अब की बार बेटे ने अपनी झुकी हुई पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाई, पिता की आंखों में देखा और अपनी पलकें नीचे कर ली। 2 आंसू की बूंदें उनमें से नीचे गिर गई। पिता ने उस 4थे बेटे के पैर छुए और अपने गले से लगाया कि सच, सचमुच तुमने सच को पा लिया। काश हम भी आज भगवान ने जिस सच को पाया है उसको अपनी भरी हुई आंखों से देखें और 2 आंसू हमारी आंखों में भर जाएं कि ये सच मेरे पास होते हुए भी मैं इस सच को नहीं पा पाया। किसी के सच पाने से हमारे भीतर अगर सच्चाई को पाने की तड़फ होती है तो मानिएगा कि वो सच हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मेरे साथ नमोकार करिए इस भावना के साथ कि अगर किसी ने सच पाया है पर मेरे भीतर सच को पाने की ताकत है तो आखिर ऐसा क्या है जो मुझे उस सच को नहीं पाने देता? ऐसा कौन सा ऑब्स्टिकल है जो कि मुझे अपने से दूर रखता है? बस जिस दिन जो व्यक्ति इस बात का गौर करने लगेगा उस दिन मैं भी विश्राम ले लूंगा, उस दिन मैं भी चुप हो जाऊंगा। शायद उस दिन हम सब चुप हो जाएंगे जिस दिन हमें सच प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए तो बोल लें, उस सच का स्मरण कर लें। अकंठो सुकुंठो मम आवाल्याद्यं देव देव भवता श्रीपादयो सेव्या सेवा शक्ति विनय कल्पलतया कालो त्यावत कथा त्वां तस्या फलमर्थ ये तदधुना प्राण प्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठो सुकुंठो मम। तब तक चुप नहीं होऊंगा भगवन जब तक तुम्हें पा नहीं लूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें पा लूंगा उस दिन मैं चुप हो जाऊंगा, जरूर चुप हो जाऊंगा। पर तब तक मुझे चुप नहीं बैठने देना जब तक कि मैं तुम्हें ना पा लूं। अगर मैंने तुम्हारी भक्ति की है, अगर मैंने तुम्हारी पूजा की है और तुम कोई मुझे वरदान दे सकते हो तो यही देना कि जब तक तुम्हें ना पाऊं तब तक मेरा ये कंठ तुम्हारा नाम लेने के लिए रुद्ध ना हो जाए, मैं चुप ना बैठ जाऊं। हम सब अपने आत्म कल्याण के लिए चुप ना बैठ जाए, निरंतर अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार करिएगा, कुछ दिन और मेरा साथ दीजिएगा। आप मेरा साथ तो चाह रहे हैं पर आपको मेरा साथ भी तो देना पड़ेगा। शायद संभव हो, जो भी संभव होगा वो मैं आपके लिए करूंगा। बाकी मेरे हाथ में नहीं है, आपकी भावनाएं आपके पास हैं, मेरी श्रद्धा जिन चरणों में है वहां मैं बंधा हूं, आप अपनी भावनाओं से बंधे रहिए, कोशिश करते रहिए, मुझे पाने की कोशिश तो कम करिए, अपने को पाने की कोशिश जरूर करते रहिए। इस भावना के साथ मेरे साथ नमस्कार।
धम्मं शरणं पवज्जामि। भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की, आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि महाराज की।